नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह, आज के मेहमान बाबा विचित्र सर, शादाब जी, मयंक जी और पुण्यन्दु जी, आप सभी का स्वागत है। चर्चा आज ओपन एंडेड रखी गई है, सबकी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि चर्चा बसपा से होते हुए टर्नआउट पर जाएगी और वहीं अपना मुकाम खत्म करेगी। तो बाबा, ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे शुरू करते हैं बसपा का सवाल, क्योंकि चुनाव से पहले आपने, मायावती ने उनको उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उसके बाद उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ, कैंपेनिंग उन्होंने की। कैंपेनिंग में ऐसी भाषण दिया उन्होंने कि दो जगह FIR हो गया, घर बैठाया गया और अचानक से अब उनको हटा दिया गया। क्या दबाव की पॉलिटिक्स है या मायावती को लगता है कि सच में वो अभी इमेच्योर है पॉलिटिक्स के लिए?
देखिए, इमेच्योर है तो आप उनको लेकर आए क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, आपको तो घर का बच्चा है, आपको मालूम होना चाहिए ना कितना मेच्योर है, नहीं मेच्योर है। अब आप लेके आए, आपने उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, ये भी कहा कि ये हमारा उत्तराधिकारी है, इसका मतलब वो काशीराम जी के, एक दिन और हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो पूरी लिगेसी है काशीराम की और एक इंडिया में दलित मूवमेंट की लिगेसी है, उसकी बात होने लगी कि उस इस जो आकाश आनंद है उस लिगेसी को लेकर के कितना आगे जाएंगे। उस नौजवान लड़के ने 2-3 भाषण दिया, खूब वायरल हुआ, वो भाषण सुना गया, लोगों ने चर्चा शुरू की। कई बार आपने भी कहा कि एक बार हमको भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। भाषण में टारगेट पे कौन रहेगा? बीजेपी रहेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि सबके टारगेट पे वही है, क्योंकि सरकार में वही है, सरकार वही है। अब आप एक दो भाषण देने के बाद FIR हुआ तो किस, कौन सा ऐसा नेता है जिसके खिलाफ FIR नहीं होता है? चुनाव के समय तो होता ही है FIR, चुनाव आयोग बोलेगा ही आपको, लेकिन हम सब जानते हैं चुनाव आयोग के दांत दिखाने के और असली दांत तो है नहीं। तो चुनाव आयोग आज तक तो वो एक सेशन के जमाने में हुआ होगा जब बाला साहब ठाकरे को वोट ना देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार छीन लिया था कभी कुछ धर्म के नाम पे प्रचार करने पे। अब तो वो सब तो इतने सालों से हमने देखा नहीं। तो आपने उसकी सजा दी है, उसकी सजा ये दी है कि ये लड़का इमेच्योर है। तो सबसे पहले आपकी पहली गलती कि इमेच्योर को आप क्यों राजनीति में लाए और अपना उत्तराधिकारी। दूसरी बात जो कि सब जानते हैं और बोल कोई नहीं रहा, ये आपने दबाव में किया, सब जानते हैं किसके दबाव में किया, फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और सब जानते हैं किसकी बी टीम बनी हुई है, मायावती की BSP, फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं रहा। तो सब कुछ जो है जनता के सामने है, अब जनता को तय करना है कि वो BSP का करे तो क्या करे। जहां पे समाजवादी पार्टी का जिस जात का उम्मीदवार होता है, आप भी प्रत्याशी बदल के उसी जाति का दे देते हो, एक जगह नहीं दो दो जगह, दो दो जगह नहीं तीन तीन जगह, तो ये सब क्या शो करता है? यदि आपको देना होता पहले ही देते, ये करेक्टिव मेजर्स क्यों आ रहे हैं? पहले ही उम्मीदवार ले आते, यदि आपके दिमाग में वो सबसे सक्षम उम्मीदवार था तो उसको पहले लाते, तो अश्विनी को नहीं लाके, पुण्यन्दु को नहीं लाके, मनोरंजन भारती को, विचित्र जी को, ये क्या है, ये वो म्यूजिकल चेयर चल रहा है क्या, यहाँ लगातार बदल रहे? तो ये सारी चीजें दुविधा है इससे दिमाग में, जनता के दिमाग में, और जनता इन सब चीजों को देख रही है। जनता बेवकूफ नहीं है, वो जब वोट करने जाएगी तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये सब चीज होगा कि बहन जी क्या करें।
तो पुण्यन्दु जी, बाबा बोले दबाव, दबाव किसका है, किसका नजर आ रहा है आपको दबाव बसपा पर?
नहीं, ये तो बहन जी बताएंगे दबाव किसका है, लेकिन चर्चा ये है कि आकाश आनंद ने एक बहुत ही फायरी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने BJP के ऊपर बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए और आतंकवाद से तुलना कर दी उन्होंने।
10 साल वाला
जो बयान है और उसको लेकर के सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि शायद वो जो गर्मजोशी में उन्होंने भावावेश मांगे जो उस तरह का भाषण दे दिया, FIR उससे जो दर्ज हुई है, और बताया जाता है कि दबाव शायद उसी चीज का है। बाकी मैं ये कहूंगा कि शायद उन्होंने, बहन जी ने शो देखा था हमारा जिसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि बहन जी को अपने परिवार के किसी सदस्य को बनाने के बजाय, जैसा कि कांग्रेस में है कि आरोप है एक परिवारवादी पार्टी का, लेकिन उन्होंने खड़गे साहब को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अब जरूर हो सकता है बैकडोर से कंट्रोल है, नहीं है, लेकिन परसेप्शन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जिस तरह खड़गे साहब का सम्मान करते हैं, वो एक सम्मान दिखता है, वो सब दिखाने वाला सम्मान नहीं है। और खड़गे साहब बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक इंडिया अलायंस को लेकर के वो किया, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, जो एक मैच्योरिटी वाली बात है, गंभीरता के साथ, मतलब एक अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, तो वैसा ही अगर बहन जी किसी ऐसे व्यक्ति को बनाती तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल उन्होंने जिस एन चुनाव के बीच में, मैं कहता हूं अगर हटाना भी था तो एन चुनाव के बीच में ऐसे हटाना, ये बहुत मैसेजिंग वोटर्स के बीच में मैसेजिंग गलत है, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल हो रहे हैं और मैं देख रहा था कि मैंने बहुत ध्यान से देखा और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो तकरीर जिसको कहते हैं कर रहे थे, वो बहुत बढ़िया भाषण जोश में दे रहे थे, युवा हैं। मुझे लगता है कि एक जैसा मैन सर कहते हैं ना कि वो तेजस्वी ने आरजेडी 2.0 को वो किया है, एक नया फेस दिया है कि लालू यादव से जो वोटर कहीं अपने देसी जबान में आगाह गए थे, तो वो नए वोटर को उन्होंने जोड़ा, वो माई नहीं बाप की पार्टी को बनाया। तो शायद आकाश आनंद भी वैसा कुछ करने की फिराक में थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे थे और बीएसपी को मानते थे ना कि मीडिया से उनके लोग बात नहीं करते। एक जमाने में हम देखते थे सुदीन भदौरिया साहब बैठे हुए, अब तो कोई प्रवक्ता भी आप कौन है पता नहीं है, बीएसपी के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो इतना आसान नहीं होता। नया बदलाव ला रहे थे, बीएसपी को चेंज करना था तो करते, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप परिवार के इतर अगर किसी को आप लीडरशिप देना चाहते हैं, उनको करना चाहते हैं, तो आपको उनको मौका देना चाहिए।
ठीक है,
चुनाव के बीच में मुझे लगता है आत्मघाती कदम।
शादाब जी, जैसे इन्होंने कहा कि परिवार का, जैसे वीडियो देख के इसमें ये बोल रहे थे कि परिवार का नाम है, लेकिन उनका भाई तो अभी भी वही उनको ही पद दिया हुआ है जो पहले पद था उनके पास, यानी परिवारवाद तो वहां जारी है। आकाश को ही साथ क्यों किया गया, क्या मैसेजिंग है या जो दबाव आ रहा था उनके ऊपर कहीं से वो दिखा के कि हाँ चलो हमने हटा दिया, अब दबाव नहीं आना चाहिए, आपको क्या नजर आता है?
देखिए बिल्कुल जैसा कल जो मायावती जी ने 3 ट्वीट किए उसमें उन्होंने ये कहा कि आकाश को हटाने की बात की और जो उनके भाई आनंद कुमार उनकी जिम्मेदारी बनी रहेगी पार्टी को मजबूत करने के लिए। देखिए दो लोगों ने इस पूरी बात कह दी है तो मैं वो बात तो रिपीट नहीं करूंगा, उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए आकाश जो है वो बसपा के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आए थे और जो लोकसभा जो उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ज़्यादातर प्रत्याशियों की डिमांड थी कि आकाश को उनके यहाँ भेजा जाए। आकाश एक नई उम्मीद के तौर पर उभरे थे और लगता था कि बीएसपी को रिवाइव कर सकते हैं, जिस तरह उनके अंदर बहुत क्लैरिटी थी, खासतौर पर जो बीएसपी जिस तरह का नैरेटिव सेट करती है, जिस तरह की बात बीएसपी करती है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अगर आप आकाश के भाषण को सुने तो वो ठीक उस वर्ग को टारगेट कर रहे थे, उस अपने उस कोर वोटर को टारगेट कर रहे थे जिसको बहन जी चाहती हैं। तो मायावती से ज़्यादा साफगोई के साथ वो बात कर रहे थे, जैसा हालांकि उनकी ज़ुबान फिसली, जैसा कि अभी आपने पुणेंदु ने कहा कि वो उन्होंने कह दिया कि आतंकवादियों की सरकार है, उससे वो बच सकते थे। लेकिन मैंने एक बयान और भी सुना, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राम मंदिर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज के दौर में कोई भी राजनेता इस तरह से नहीं बोल सकता है, क्योंकि मंदिर को लेकर एक लोगों का सेंटिमेंट है, एक फीलिंग है। लेकिन आकाश आनंद ने वो बोला कि वो मंदिर नहीं जाएंगे बल्कि वो संसद जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये इसकी हालांकि इस बयान की आलोचना भी हुई, लेकिन अगर आप उनके भाषण को, ये तो उनका एक बयान हुआ, लेकिन उनके भाषण को अगर आप सुने तो ऐसा लगता था कि वो जो उम्र है उससे ज़्यादा वो मैच्योर हैं। उनकी उम्र तो कम थी लेकिन वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई पुराना खाटी राजनेता बोल रहा है जिसको लंबा अनुभव है, जो संसद से होके आया है, तो इस तरह का अनुभव वो दिखा रहे थे अपने भाषण में। अगर सिर्फ 2-3 बातों को आप छोड़ दें, FIR तो जैसा बाबा ने कहा कि होती रहती है, आज भी मैं देख रहा था कि एक आदमी के ऊपर FIR हुई, तमाम FIR नेताओं के ऊपर हुई है, तो FIR से डरने की कोई बात नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि बहन जी ने एक उभरते हुए सितारे को अस्त कर दिया, एक जो सितारा जिसकी अभी रोशनी फैलनी थी तो वो उसको उसकी लाइट ऑफ कर दी गई, मैं यही कहूंगा। और ये बीएसपी के लिए ठीक नहीं हुआ।
ठीक, चर्चा के बीच में बाबा चाय आई नहीं तो उससे पहले मैं जी चीनी लेके आ गए थे, पता था इनको। सर विचित्र सर, आपसे शुरू करते हैं, चाय का सिप ले लीजिए, पहले बताइए चाय कैसा है।
चाय अच्छी है,
कड़क चाय बनी आज तो। थोड़ा कड़कती हुई बात बता दीजिए कि बसपा का जो हम तीसरी चर्चा आई है बसपा को लेकर, और पढ़े भी आप बसपा पे याद आए आज तो आपको
नहीं। आज वैसे मैं बता दूं कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर करते, इजराइल ने जैसे रफा पे हमला कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं तब इनको शिकायत का बहुत मौका मिलता है कि मैं बहुत लंबा समय लेता हूं।
मैं एक बस एक सवाल ऐड करूंगा, क्या आपको लगता है सैम पित्रोदा अभी कांग्रेस के नए मणिशंकर अय्यर हैं?
सैम पित्रोदा ये पता नहीं ऐसा क्या है, स्लीपर सेल है क्या है लेकिन इस समय पूरे 5 साल तक तो कहाँ हैं, क्या करते हैं पता नहीं चलता। एक बार अमेरिका राहुल गांधी गए थे तो उनके साथ फोटो उनकी दिखी थी
कुछ ओवरसीज कांग्रेस को।
हाँ, तो ओवरसीज कांग्रेस को, लेकिन फिर जो है चले आते हैं भारत में चुनाव के समय में चले आते हैं, कि मतलब उनकी वाणी चली जाती है और उनकी वाणी उनके सशरीर मौजूदगी से ज्यादा खतरनाक हो जाती है कांग्रेस के लिए। तो खैर वो कोई मुद्दा नहीं है, वो अनावश्यक मुद्दा है, हर व्यक्ति को अपने विचार।
लेकिन सर टीवी पे तो हर आज छाए हुए हैं वही, उससे पहले भी वो टीवी पे छाए हुए थे, कांग्रेस उसको तुरंत अलग कर लेती है।
प्रधानमंत्री की वाणी में बहुत जादू है, वो जिसको ये कर दे
सही बात।
तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनको
सर्वोच्च नेता है जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट पड़ता है,
तो इसलिए बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने उनके बयान को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया और इसीलिए वो छाए।
तो बसपा पे क्या लगता है आपको?
इसको ज्यादा मुद्दा मत बनाइए, सबको मालूम है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को दिल्ली में क्या कहा जाता है, इसलिए
कोविड के समय खासकर कहा गया था, मुझे याद है कोविड के समय।
और जो नागपुर के नीचे सब साउथ इंडिया मद्रासी ही है, कोई केरल नहीं है, कोई कर्नाटक नहीं किसी को, तो इस पर थोड़ा बचे तो अच्छा रहेगा।
तो अब रही बीएसपी आकाश आनंद,
आकाश का आनंद या आनंद
आनंद
का आता
है? आनंद का क्या नाम है?
आकाश आनंद।
आकाश आनंद, तो उनके आकाश को का परिसीमन कर दिया मायावती ने कि बहुत बड़ा अभी होने लायक नहीं है। इसमें आप देखिए कि हमने उनके कई इंटरव्यू देखे हैं, आकाश आनंद लहजा तो उनकी तरह नहीं है, कांसी राम की तरह, लेकिन वो बात कांसी राम वाली ही करते हैं। मसलन कांसी राम ने कहा था कि हम किसी के साथ जा सकते
हैं। ये बात उन्होंने भी कही,
ये भी बोलते थे कि हम किसी के साथ जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांसी राम ने जैसे अयोध्या को लेकर के, मंदिर को लेकर के उनके जो बयान थे, उन्होंने वहाँ शौचालय बनाने की बात की थी, इन्होंने वैसी आपत्तिजनक बात तो नहीं की, लेकिन इन्होंने भी ये कहा कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा और मैं संसद जाना पसंद करूँगा। वो भी सत्ता को महत्वपूर्ण मानते थे कि उससे दलितों में ये होगा, ये भी सत्ता वाली बात करते थे। वो भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चूंकि उनके समय में कांग्रेस सत्ता में ज़्यादा थी और सांपनाथ और नागनाथ दोनों को मायावती ने कहा था लेकिन कांसीराम का भी यही फलसफा था। और तिलक तराजू तलवार से लेकर के तमाम बातें होती थी। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार पहली बार बनी थी 1993 में उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीएसपी शामिल थी, उसमें कोई सवर्ण या अगड़ी जाति का व्यक्ति मंत्री नहीं था, तो ये कांसीराम के दबाव की वजह से हुआ था। कांसीराम जो राजनीति करते थे, लेकिन कांसीराम की उस राजनीति ने मायावती को तो ऊंचाई उस समय दी, लेकिन मायावती जो राजनीति पिछले कुछ वर्षों से कर रही हैं, उसमें आकाश आनंद जो कुछ बोल रहे थे वो मायावती को कोई ऊंचाई तो नहीं दे रही थी। मायावती को लग रहा था कि वो कहीं फंस न जाए। फिर दूसरी बात कि मायावती को आप लोगों ने किसी ने सक्रिय राजनीति करते पिछले एक दशक से तो नहीं देखा है।
लगभग
चुनाव के समय में, चुनाव हो रहा है उस समय आप आ जाते हैं और दो तीन रैलियां 10 रैलियां कर लिए, इतने भर की उनकी राजनीति है। बाकी वो एक बंद कमरे में है, जैसे फिल्मी दुनिया में सुचित्रा सेन के बारे में कि उनको किसी ने देखा नहीं, बहन जी को भी कोई नहीं देखता।
धरना प्रदर्शन
भी तो दूर की चीज है, वो रैली उतना बड़ा वो उनका कदर है, कम से कम रैली, लोगों से मिलना जुलना, वो कहीं किसी के यहाँ आना जाना, वो सब ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो इसलिए उन्होंने एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि वो राजनीति में होकर भी उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी घोषित कर दी है। और अपने भतीजे को उन्होंने जो कुछ कहा है वो लगता है कि एक किस्म का दबाव है, वो दबाव है या कोई लगाव है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं इस पर तो नहीं कुछ कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि वो भतीजे को एक तरह से एक डांट भर है, वो आज नहीं तो कल वो भतीजा ही उनका वारिस होगा या परिवार का ही होगा। मुझे नहीं लगता कि मायावती को अचानक सद्बुद्धि आ गई है और कांसी राम की तरह उस एक बड़े समाज को सुधारने या के हित के लिए कोई फैसला लेंगे।
मैं सर, आपकी डिमांड बहुत रहती है यूट्यूब कम्युनिटी में, लोग कहते हैं कि ये उस दिन आप पीला शर्ट पहन के आए तो लोग बोले कि पीला शर्ट वालों ज़्यादा बोलना मौका दिया करिए, अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण ये है कि टर्नआउट की काफ़ी चर्चा है हर फेज के बाद ना, विपक्ष ये कहता है टर्नआउट, और इलेक्शन कमीशन में काफ़ी सवाल उठते हैं। तो कल भी देखा हमने कि टर्नआउट पिछली बार की तुलना में आज 65% हो गया है, लगभग 1.5% कम है पिछली बार की तरह, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड के मुकाबले ज़्यादा हुआ है इस बार। क्या कारण नज़र आते हैं आपको और क्या विपक्ष इससे कहीं खुश हो सकता है कि टर्नआउट कम है तो उसके लिए खुशी की खबर है?
इसका सीधा जवाब नहीं देंगे।
अच्छा,
थोड़ा सा
तो घुमा फिरा के कहिए, अच्छा लगेगा।
आज कितना तारीख है?
आज आठ तारीख है।
अब 8 अप्रैल को हम लोग चलते हैं, एक महीना रिवाइंड करते हैं, तो इलेक्शन लगता था बड़ा बोरिंग है,
सही बात।
और जब शुरू हुआ तो उसके बाद से थोड़ा लगा कि थोड़ा सा मसाला आना शुरू हुआ। अब 3 फेज के बाद कुछ मसाला आ गया, 2 मसाला आ गया है एकदम से साफ, केस ऑफ मिसिंग पॉलिटिशियंस और केस ऑफ मिसिंग वोटर्स, दोनों चीज है। हम मिसिंग पॉलिटिशियन में मायावती का नाम हम लोग ले ही रहे हैं, नीतीश जी को भी उस कैटेगरी में शायद हम लोग रख सकते हैं।
सही बात है, पूरे चुनाव बाबा दिख नहीं रहे हैं।
नीतीश कुमार का हम लोग जो सोशल मीडिया पे कोई लाइव वगैरह तो देखे नहीं है, सोशल मीडिया पे दो चीज उनका आता है, 4000 पार, दूसरा कि लालू जी ने देखो कि 9 बच्चे पैदा कर,
लालू जी के बच्चे पैदा करने चीज
इस इलेक्शन में। तीसरे लीडर जो मिसिंग है इस बार एक्शन में, और वो किसी और वजह से उनको जेल में ही डाल दिया, अरविंद केजरीवाल। तो मिसिंग लीडर्स, और इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड मेरे हिसाब से टर्नआउट भी है, और मिसिंग वोटर।
तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो
बोल रहे हैं कि मिसिंग लीडर क्यों है नहीं है ये पता नहीं,
लेकिन
हाँ हेमंत सोरेन का हाँ हेमंत सोरेन भी है,
लेकिन सही बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की वैसा लग रहा है कि कुछ दिनों में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी।
हाँ नहीं नहीं हम
उसपे कोर्ट में कैसे बोले आप, वो कोर्ट अपना तय करे।
हम ये बोल रहे
हैं, हम दर्शकों को बता सकते हैं कि फ्राइडे को उनके अंतरिम जमानत पे वो फैसला देने वाला है, कल है।
तो वो मिसिंग वोटर को अब ये जुड़ा हुआ है, मिसिंग वोटर हम बोले तो आप देखिए क्या है कि कहाँ कहाँ ज्यादा डाउन है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा डाउन है, और मध्य प्रदेश में फर्स्ट दो फेज में था, इस बार ठीक हो गया। ओवरऑल अभी तक महाराष्ट्र में डाउन है, उत्तर प्रदेश में डाउन है, और बिहार में डाउन है। गुजरात
में पिछली बार की तुलना 5%, वेस्ट बंगाल में 5.2%, और बड़े राज्य में यही है, महाराष्ट्र में भी डाउन है। और
तो उसका जैसे वेस्ट बंगाल का बेस इफेक्ट है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा पोलिंग होती है, और जनरली होता है क्या कि वो मतलब नरेटिव दबा के ले जाते हैं कि चलो आज वोट देना ही है। इस बार जो है वो
गर्दन 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 जो दर्शक पकड़ के बिहार के उससे नहीं है उसको गर्दन
समझा दीजिए।
तो ये जो देखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है टर्नआउट का, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी वही मिसिंग लीडर से ही शायद रिलेटेड है कि बिहार में नीतीश के वोटर को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा वोट एनडीए को जाएगा इवेंचुअली या इंडिया को जाएगा, क्योंकि नीतीश बाबू इलेक्शन के बाद क्या करेंगे किसी को भी पता नहीं है, वोटर को भी तो बिल्कुल पता नहीं है, इसीलिए वो शायद एक्शन से, उनके वोटर भी एक्शन से बाहर हैं, तो इसीलिए लगता है एग्जैक्टली सेम चीज मायावती के वोटर के साथ भी हो सकता है कि मायावती को जो हम वोट दे रहे हैं ये किसको वोट पड़ रहा है हमको पता नहीं है, इसीलिए शायद हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी डाउन है।
अच्छा।
और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कि शिवसेना कौन, एनसीपी कौन, लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जा रहा है। अब अजीत पवार चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे और एकनाथ शिंदे कितने मजबूत रहेंगे, और इसका वोट कहीं इंडिया को नहीं चला जाएगा, तो एनडीए वाले जो वोटर होंगे उनको दुविधा होगी ये, और इंडिया वाले इंडिया गठबंधन वाले वोटर को दुविधा होगी कि पता नहीं कौन इसके बाद से, ये उद्धव ठाकरे इसी में रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे।
सही बात है।
इस तीनों जगह में जो वोटर टर्नआउट डाउन है इसके पीछे मेसी एलायंस जो है और मिसिंग लीडर्स जो है मेरे हिसाब से ये वजह है।
नहीं, आपने इन्होंने बहुत सही पॉइंट बोला, इन्होंने जिस ढंग से महाराष्ट्र की व्याख्या की, बिहार की, महाराष्ट्र में मेरी चूंकि कल ही पोलिंग हुई है तो बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई कल से लेकर आज तक में, तो बहुत सारे लोग सच में बहुत कंफ्यूज हैं, और लोग बोल रहे हैं कि बारामती का चुनाव भी टाइट है, बाकी आप किसी और से बोलेंगे तो नहीं सुप्रिया सुले जीत रही है, बहुत सारे बारामती एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 167 कंप्लेंट्स दर्ज किए गए, अभी तक इतना किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है, ये बात हुई। दूसरा एक सिगुफा जो है शरद पवार ने छोड़ा है, आपने एक अंग्रेजी अखबार में उन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं इस देश में, इस ढंग की राजनीति हो गई है कि जो छोटी पार्टियां हैं कांग्रेस से या तो जो निकली हैं या जो उनकी एलाइज हैं वो आगे चल के उनके और नजदीक जाएंगी और उसमें से कुछ तो कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगी।
अच्छा। अपनी पार्टी के लिए भी कहा।
अब वहां पे मैंने कुछ लोगों को फोन किया कि भाई ऐसा क्या है, बोला शरद पवार जो है उन्होंने तो अभी तो ये कह दिया, वो इंटरव्यू कुछ दिन पहले का हुआ है, उसको पब्लिश क्या जानबूझ के आज किया गया है ये भी एक सवाल उठाया गया, और ये भी कहा गया कि ये इंटरव्यू कुछ दिनों बाद होने वाला था पब्लिश, लेकिन उसको किया गया जो महाराष्ट्र में इस फेज के बाद जब बारामती का चुनाव हो गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो कन्फ्यूजन महाराष्ट्र के वोटरों में है, कौन असली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, आपने उनका घड़ी का सिंबल तो ले लिया, लेकिन पवार खुद अभी हैं, बाला साहब नहीं है तो चले उनके पार्टी टूट गई। आपको एक ठाकरे सरनेम चाहिए था तो आप राज ठाकरे के पास गए, दिल्ली बुलाया गया, मीटिंग हुई, हालांकि राज ठाकरे
सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बिना कुछ मांगे, ये बिना कुछ बिना शर्त,
क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से डरते हैं। राज ठाकरे का एक हवा खड़ा किया गया इस देश में कि वो बहुत बड़े लीडर है, वो बहुत बड़े लीडर ने उनका केवल एक ही विधायक है,
सही बात, अभी भी
वो अपनी पूरी राजनीति उत्तर भारतीयों को डराने धमकाने पे चलाते हैं, वही उनका यूएसपी है। बीजेपी भी इससे थोड़ा आगे बढ़ के डर गई कि क्या पता उसके बहुत नजदीक आने से उत्तर भारतीय मेरा वोट न खिसक जाए, समझ गए आप। तो और उसके बाद लोगों को, वहां के लोगों को मालूम चल गया कि जिस ढंग से दो पार्टियों में दो तरफा टूट की गई है, ये शायद महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया। जो मयंक जी कह रहे हैं वोटर टर्न आउट महाराष्ट्र में सबसे कम इसलिए भी हो सकता है,
मतलब कंफ्यूजन है,
कंफ्यूजन है लोगों में, बोला कि यार यही राजनीति है क्या, क्यों किसको वोट देना है, आप चाचा को दे कि तो भतीजा को दे कि उद्धव ठाकरे को दे कि शिंदे को दे, इसको लेकर के मुझे लगता है इसका यह प्रभाव पड़ा है।
विचित्र सर,
इसमें मैं जो है इसमें कुछ सवाल पूछना चाह रहा था मयंक सर से ही कि देखिए पहले जो दो चरण थे उसमें पोलिंग में 19 की तुलना में काफी कम थी, 3-4% कम हुई, लेकिन ये जो चरण है ये इसमें अच्छा मतदान, मैं कहूंगा अच्छा मतदान हुआ, 65% से ऑलरेडी अभी जो डेटा है, हो सकता है अभी और अपडेट होगा, हो गया है। अभी हम मध्य प्रदेश का अगर एक केस स्टडी के तौर पर एग्जाम्पल लें तो पहले दो चरण में भयानक गैप था, पहले चरण में 7% कम मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 9% कम मतदान हुआ था, लेकिन इस चरण में वो मतदान मुझे लगता है पिछले चरण से ज्यादा हो चुका है।
नहीं 2.5% था नहीं, उस समय, अभी, लेकिन अभी
नहीं, अभी जो अब आंकड़ा जैसे पिछली बार 66.7%, इस बार वो 66.7% ऑलरेडी हो गया है, तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत और अपडेट होकर हो सकता है कि एक माइनर वो ले ले। अब 9% कम से अचानक सीधे बराबरी पे आ जाना, या 4% के अंतर से अचानक वो 1.5% का अंतर मान लीजिए हो जाना, ये क्या इशारा करता है, इसकी क्या अब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है अचानक इस चरण में, जो चुनाव थोड़ा ठंडा लग रहा था ये वजह है, या कोई और वजह है कि पार्टियां अब ज्यादा मोबिलाइज कर रही हैं अपने वोटर्स को, क्योंकि एक बड़ा या इलेक्शन कमीशन उस हद तक काम कर रहा है।
सवाल है कि क्या
और अगर दो चरण में 7-9% कम हुआ था और अब ये क्या है बराबर हो गया, मध्य प्रदेश की अगर हम एग्जाम्पल लें, और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तीसरे चरण में ऐसा बुरा नहीं हुआ है, पिछली बार लगभग 64% करीब हुआ था, इस बार भी वो 61.45% के आसपास हो चुका है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत और अपडेट हो तो उतना बुरा नहीं मानेंगे, उसको आप कैसे देखें?
ओवरऑल टर्नआउट इस बार थोड़ा बेहतर रहा है।
हाँ वही सीधा से एकदम ऑब्वियस आंसर है, पहले देखिए ना कुछ दिन पहले तक लगता था कि मोस्ट बोरिंग इलेक्शन होगा ये, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी कांग्रेसी भी नहीं बोलते थे कि हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेसी बोलते भी नहीं थे ये, अब अचानक ही सोशल मीडिया पे क्लेम करने लगे कि अब तो बीजेपी को 200 से नीचे कर देंगे और हम हमारी सरकार आ रही है।
बाबा बोलेंगे रुकिए।
हाँ ये सब
मुझे मालूम है, ऑफिस में दो लोग बोलते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा।
हाँ
क्या बोलते थे?
हाँ
मैंने क्या हाँ, होने वाला है। हाँ
तो इसीलिए मतलब विपक्ष ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, पता नहीं दो फेज के बाद उनको क्या लगा, उनको क्या फीडबैक मिला, वो लोग एग्रेशन में आ गए, और उसी के काउंटर में बीजेपी वाले को भी लगा कि कहीं ये लो टर्नआउट हमको तो नुकसान नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे वोटर भी कंप्लेसेंट हो गए, और तो इसीलिए मोबिलाइजेशन दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त हुआ है दो फेज के बाद, और उसका असर इलेक्शन कमीशन भी बहुत सक्रिय है,
सही बात, इस बार अब
बहुत सारा इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, आज कहीं पढ़े थे कि हीरा दिया जा रहा है, हीरा की अंगूठी दी जा रही है,
ये ज्यादा है, थोड़ा रफू कर देते हैं, आम हो गए, मालदा में आम लटकाया गया था, आम 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 का जो वो जूस दिया जा रहा था, मैं राजस्थान में था, मैं इसलिए बताता हूँ कि लेकिन उस दिन वहां पे उतनी गर्मी नहीं थी, तो आपको दिमाग में होता है कि आप राजस्थान में खुद नहीं घूम रहे हैं तो आप कहें यार राजस्थान में है यार, अप्रैल में मैं चुनाव कराते हो कैसे होगा, लेकिन सच में उतनी गर्मी नहीं थी जिस दिन वोटिंग हुआ है, बहुत जगह मौसम बदल गया था, लेकिन फिर भी वोट कम हुआ, वोटर में उदासीनता है, आपको बता दूं उसके बाद कार्यकर्ता में उदासीनता है, वोटर का तो चलिए फिर भी पॉलिटिकल पार्टी सह लगी, कार्यकर्ता नहीं निकल रहे घर से जो वोटर को बूथ पे लाते हैं, ये सारे पन्ना प्रमुख वो सब फेल हो गए थे क्योंकि वो निकले ही नहीं, उन्होंने बोला कि बस उदासीनता है, दोनों तरफ से उदासीनता, आप कैसे भी इंटरप्रेट कर लिए, कोई थंब रूल है नहीं, लेकिन 5 बार आप दोनों तो जानते हैं ना, 5 बार वोटिंग कम हुई है तो 4 बार सरकार बदली है, ये है ना, तो इसको थंब रूल तो नहीं कहेंगे, फिर भी अब उदाहरण है तो फैक्ट तो बोलना ही पड़ेगा।
6 में से 4
पता नहीं, मैं चूंकि बहुत इस पर मेरा न तो अध्ययन है न ये, कि पिछले दो चरण के जो चुनाव हुए थे वो शुक्रवार के दिन हुए थे, तो वो शुक्र शनि रवि छुट्टियों का भी घालमेल होता है, लोगों को लगता है कि क्या है वोट देने का, बाकी लोग वोट दे ही देंगे, हम नहीं देंगे।
आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की, तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं आप, और मैं आपकी बात और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से राजीव कुमार साहब ने जब कर्नाटक का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं सर को याद होगा, तो उन्होंने बुधवार मुझे क्यों अश्विन बुधवार का दिन शायद चुना था
वर्किंग,
और उन्होंने उसकी वजह ये बताई थी कि अगर हम फ्राइडे उसमें रखते थे वीकेंड्स में लोग ऐड करके लोग छुट्टी मनाने चले जाते, तो क्या इलेक्शन कमीशन को वो कर्नाटक का एग्जाम्पल वो भूल गए इस बार?
हो सकता है कि भूल सर आप
सवाल आपसे ही रहेगा और शादाब जी से। मैं एक सवाल ये कहना चाह रहा था कि 25 सीटें गुजरात में हुई, वहाँ करोड़ 26 नहीं 25, एक सूरत तो अनपोज था, वहाँ के टोटल
अजीब था कि लोग पोस्ट कर रहे थे कि सूरत में 0% मत आना, हद है सबको पता है
नहीं, तो
कांग्रेस ही सब बोल रहे थे कुछ, इंडिया गठबंधन वाले कुछ बोल रहे थे हाथ धो गया सूरत में 0% मत।
अच्छा मुझे
क्या पूछ रहा था बताइए।
देखिए नहीं, मेरा सवाल ये था कि वहाँ 4.69 करोड़ करीब टोटल मतदाता थे, और वोट जिसने उनके बाबा, ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं जो इलेक्शन कमीशन ने दिया लेकिन हम लोगों ने निकाला, उसमें ये है कि गुजरात में 2.85 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला, नहीं डालने वालों की संख्या थी 1.94 करोड़, सबसे ज्यादा यही थी। मतलब गुजरात में की बात कोई नहीं कर रहा है, गुजरात में 5% का पिछली बार से कम अभी तक सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों में था। गुजरात में आपको लोग लगता है कि जनता भी समझ चुकी है क्लीन स्वीप है, कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए इतना 2 करोड़ मतदाता लगभग घर से नहीं निकले, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ,
आपकी बात में 100% सच्चाई है, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं।
देखिए जुड़ रहा हूँ, क्या जो राजपूत मतदाताओं की जो नाराजगी थी वो तक घर बैठ गए हो, ये भी तो हो सकता है।
कितना सीट पे है? बहुत ज्यादा सीट पे है नहीं, वो तो वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नुकसान पहुंचा।
नहीं तो बीजेपी के जो लक्ष्य था कि इस बार वो 25 सीटों पर,
एक चीज मैं बता रहा हूँ मुझको ये लगता, देखिए नहीं है रूपाला ने कई बार माफी मांगी,
आज भी मांगी,
एक चीज और बता, बेसिकली होता क्या है ना कि कभी मुझे ये लगता है कि जो शुरू में ही एक नैरेटिव सेट किया गया है कि अब की बार 400 पार, और जिस तरह से अति उत्साह दिख रहा था उसमें, कई बार क्या होता है कि वोटर को ये लगता है कि सब कुछ तो मोमेंटम बन गया है और ये तो हो ही रहा है, ये तो हमें क्या वोट देने की जरूरत है। एक वो एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक गाँव में यज्ञ हो रहा था, तो हुआ कि हर कोई अपने घर से एक एक लोटा पानी लेकर आएगा, एक एक लोटा दूध लेकर के आएगा यज्ञ में जो भोज भात होना है उसके लिए। तो एक ने सोचा कि सब लोग तो दूध ले ही जाएंगे, अगर हम एक लोटा पानी ही ले जाएंगे तो कहाँ पता चलेगा। पता चला कि वहाँ सिर्फ पानी ही आया क्योंकि सबने ऐसा ही सोच लिया। तो इसी तरह से हो सकता है कि वोटरों ने यह सोचा हो कि अब क्या करना है इसमें, सब लोग तो दे ही रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों, एनडीए के हों या इंडिया के, हमारे लोग दे ही रहे हैं, बाकी लोग हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो दूसरे के मजबूत कंधों पर लोकतंत्र का बोझ रख करके लोग अपने घरों में बैठ गए होंगे, ये हो सकता है।
शादाब जी बस खत्म कर लीजिए।
देखिए मेरा ये मानना है कि जैसा कि इन्होंने एक उदाहरण अच्छा दिया और बहुत हंसी वाला उदाहरण दिया, देखिये गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला रहा है, और जो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए तो भाजपा ये मानती है कि हमको गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, और जनता में भी यह है कि भाई यहाँ तो भाजपा ही आनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, भाजपा ही को सारी लोकसभा सीटें मिलेंगी। तो जो आपने कहा कि जो 5% के करीब वोट कम पड़े, तो वो एक मुझे लगता है कि उदासीनता जरूर वोटर्स की है कि वो वोट करने नहीं निकला क्योंकि उसको लगा कि यहाँ तो भाजपा जीत ही रही है, हम नहीं जा रहे तो चलो हमारे पड़ोसी चले जाएंगे, हमारे रिश्तेदार चले जाएंगे, हमारे भाई चले जाएंगे, हमारे भतीजे चले जाएंगे। तो ये भावना हो सकती है, हम लोग यहाँ बैठ के अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये रीजन है कम वोटिंग होने का। लेकिन देखिए सरप्राइजिंगली ये है कि गुजरात में भी कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं ओवरऑल स्टेट्स का देखूं तो ज्यादा बहुत से राज्यों में, जैसे आप राजस्थान को मान लें, मध्य प्रदेश को मान लें, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो इंडिया अलायंस है वो बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाजपा के सपोर्टर्स भी मान रहे हैं कि उन राज्यों में सीटें घट रही हैं, तो वैसे ही गुजरात में भी हैं। तो ये जो वोटर्स टर्नआउट कम हो रहा है उसके मल्टीपल रीजन थे, जैसा कि अभी सर ने भी बताया, आप सब लोगों ने बताया, तो वो चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि गुजरात में जो वोटर्स ने जो थोड़ी उदासीनता दिखाई उसको ये लगा कि यहाँ तो भाजपा जीत रही है, हम नहीं भी वोट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भावना हो सकती है।
लेकिन तो इसका काउंटर्स भी है ना, कहीं अब जैसे आप देखें
कि मोबाइल पढ़ पढ़ के काउंटर निकाल रहे हैं, आप समय पढ़ा रहे हैं।
जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे चूंकि बड़े दिग्गज इस फेज में चुनाव में थे, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान थे, वहां पर जो मतदान प्रतिशत है वो 74% से ज्यादा हुआ है। राजगढ़ से थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वहां पर तो जो मतदान हुआ है वो 76% से ज्यादा हुआ है। और गुना जहाँ पे सिंधिया साहब थे वहां 72% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो तीनों दिग्गजों वाली जो सीट थी वहां पर जबरदस्त मतदान हुआ है।
ऐसा भी कह रहे हैं सर कि
इस पे आप करना चाह रहे हैं,
उन्होंने तो भावनात्मक अपील की थी।
गांधीनगर में कम हुआ 59% हुआ है।
लेकिन तो अच्छा मैंने देखा 10 लाख का टारगेट कैसे पूरा होगा।
अश्विन एक चीज और भी है कि वहाँ गुजरात में बड़ा वेरिएशन है। अमरेली में 50% से कम हुआ है और वलसाड में 70% से ज्यादा हुआ है। तो गुजरात में बहुत वेरिएशन है।
गुजरात के करीब 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी जो टॉप बॉटम जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज निकाला जाए जहाँ टर्नआउट कम हुआ उसमें ज्यादा गुजरात है। यानी गुजरात के मतदाता सच में छुट्टी मनाने चले गए थे। तो चलिए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।